नमस्कार, आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। वंदनीय माता जी, भगवती देवी शर्मा जी का एक उद्बोधन है, अध्यात्म का सच्चा स्वरूप। हम आज उसी के सार को समझने की कोशिश करेंगे।
जी बिल्कुल, और ये हमें अध्यात्म को आप कह सकते हैं एक औसत भारतीय नागरिक की नजर से देखने में मदद करता है।
हाँ, और हमारा मकसद ये है कि वंदनीय माता जी के विचारों से हम ये समझें कि सच्ची आध्यात्मिकता, सच्ची भक्ति, इसका असल मतलब क्या है, खासकर तब जब हम आत्म परिष्कार और लोक कल्याण को एक साथ देखते हैं।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं ये विचार यात्रा।
अच्छा, तो माता जी पहले तो ये साफ करती हैं कि जैसे उपासना है, जप है, ध्यान है, ये सब क्रियाएं क्यों हैं?
हाँ,
ये आत्मशोधन के लिए है, हमारे बौद्धिक विकास के लिए। इनसे हाँ लौकिक और पारलौकिक संपदाएं मिलती भी हैं
जी,
लेकिन इनका असली आधार क्या है? क्या ये सिर्फ अपने लिए है?
यहीं पर मतलब माता जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती हैं कि अध्यात्म का जो असली आधार है वो सिर्फ अपनी उन्नति, अपने सुख में नहीं है।
अच्छा,
बल्कि वो दूसरों के कल्याण में है,
बिल्कुल,
लोक मंगल की भावना में निहित है।
हाँ, और इसी बात को समझाने के लिए संत एकनाथ की वो कहानी है ना।
हाँ,
बड़ी सुंदर कहानी है।
हाँ, हाँ, बिल्कुल।
वो गंगा जल लेकर रामेश्वरम जा रहे थे
जी,
और रास्ते में कहते हैं ईश्वर ने परीक्षा ली, एक गधे का रूप धर लिया जो प्यास से तड़प रहा था।
हाँ,
और संत एकनाथ ने क्या किया, उन्होंने वो सारा पवित्र गंगा जल उस गधे को पिला दिया।
पिला दिया और कहा,
उन्होंने कहा कि इस वक्त इस प्यासी जीव की सेवा करना ही मेरा रामेश्वरम है।
देखिए ये कहानी कितनी गहरी बात बताती है कि सच्ची भक्ति जो है वो महज कर्मकांड ये नियमों में बंधी नहीं है।
सही बात है।
संत एकनाथ ने उस वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत थी, एक प्यासे जीव की पीड़ा, उसको अपने धार्मिक अनुष्ठान से भी ऊपर रखा।
बिल्कुल।
और तब घटे ईश्वर स्वयं प्रकट हुए और बोले कि हाँ, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी यात्रा सफल हुई। संत का जीवन ही दूसरों के लिए होता है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं।
हाँ, और ऐसा ही एक और उदाहरण शिव पार्वती जी का भी है, वो भी इसी निस्वार्थ सेवा के महत्व को दिखाता है।
जी, सोमवती अमावस्या वाला।
हाँ, वही सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान के लिए इतनी भीड़ थी कि पार्वती जी को शंका हुई। उन्होंने शिवजी से पूछा, क्या ये सब लोग स्वर्ग जाएंगे? तब शिवजी ने एक लीला रची, वो खुद कोढ़ी बन गए और पार्वती जी एक बहुत सुंदर स्त्री।
जी,
रास्ते में बैठ गए। अब लोग आते जाते उस सुंदर स्त्री को देखकर कहते कि इस कोढ़ी पति को छोड़ दो, पर कोई सेवा के लिए आगे नहीं आया।
कोई नहीं आया।
शाम तक फिर एक साधारण सा राहगीर आया जब भीड़ छंट गई थी, और उसने बिना किसी स्वार्थ के उस कोढ़ी यानी शिवजी की सेवा की, उनको स्नान कराने में मदद की।
तब शिवजी ने पार्वती जी को समझाया कि देखो, इतनी बड़ी भीड़ में सिर्फ ये एक व्यक्ति है जिसका मन साफ है, जिसमें सच्ची सेवा की भावना है,
अच्छा,
इसी को सदगति मिलेगी। तो अध्यात्म का असली स्वरूप यही है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ पाने की इच्छा के सेवा करना।
इसी नजरिए से फिर वंदनीय माता जी उन लोगों की थोड़ी आलोचना भी करती हैं जो पूजा पाठ, जप तप, ये सब सिर्फ अपने दुनियावी सुख के लिए करते हैं।
हाँ,
जैसे अच्छी पत्नी मिल जाए, बच्चे हो, खूब धन दौलत हो, वो कहती हैं कि ऐसी सिर्फ अपनी कामनाओं से आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती।
बिल्कुल, और उन्होंने चेताया भी है भस्मासुर का उदाहरण देके।
हाँ, वो कहानी भी है
कि देखो, भस्मासुर ने कितनी कठोर तपस्या की, शिवजी से वरदान भी पा लिया कि जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा।
जी,
लेकिन क्योंकि वो पात्र नहीं था, उसमें दुष्टता थी, अहंकार था, तो उस शक्ति का उसने दुरुपयोग करना चाहा और अंत में क्या हुआ,
वो खुद ही भस्म हो गया।
खुद ही भस्म हो गया। तो ये दिखाता है कि बिना पात्रता के, बिना मन की शुद्धि के, अगर कोई शक्ति या सिद्धि मिल भी जाए तो वो विनाशकारी हो सकती है। आत्मशोधन पहले जरूरी है।
तो फिर सवाल ये उठता है कि एक सच्चा भक्त वो भगवान से क्या मांगता है? अगर उसे राज्य नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, यहां तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, तो फिर क्या?
हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और माता जी इसके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक बताती हैं।
कौन सा?
न त्वम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम।
वाह, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका अर्थ है, हे प्रभु, मुझे न राज्य चाहिए, न स्वर्ग, न ही मैं दोबारा जन्म न लेने वाली मुक्ति चाहता हूँ।
तो फिर?
मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि जो दुखी हैं, जो पीड़ित प्राणी हैं, उनके कष्टों को दूर करने की शक्ति, वो सामर्थ्य मुझे मिले।
मतलब दूसरों का दुख दूर करने की कामना।
हाँ, यही सच्ची भक्ति है, करुणा और सेवा का भाव।
द्रौपदी वाली कहानी भी तो कुछ ऐसा ही दिखाती है ना?
बिल्कुल बिल्कुल।
जब भरी सभा में वो मुश्किल में थी और कृष्ण को पुकारा
जी,
तो कृष्ण ने पूछा कि तुमने कभी कोई पुण्य किया है
जी।
तो उन्हें बस एक ही छोटी सी बात याद आई कि एक संत थे, उनकी लंगोटी पानी में बह गई थी, तो उन्होंने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा फाड़कर उन्हें दे दिया था।
और कृष्ण ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पुण्य छोटा है या बड़ा ये मायने नहीं रखता।
अच्छा,
मायने रखती है उसके पीछे की नीयत, वो निस्वार्थ भाव।
और उसी एक छोटे से निश्चल पुण्य के बल पर उस दिन उनकी लाज बची।
तो ये दिखाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता में क्या चाहिए, बुद्धि की विशालता, माँ जैसी करुणा और दूसरों के भलाई के लिए खुद को भी कष्ट में डालने का भाव।
आपने बिल्कुल सही समझा। भक्त जो होता है वो अपने लिए संयमी होता है, कठोर होता है, पर दूसरों के लिए
बेहद उदार।
हाँ,
यही पूजा उपासना का, जप ध्यान का असल मकसद है। ये साधनाएं हमारे अंदर की गंदगी, हमारे मैल को धोने के लिए हैं, अहंकार को गलाने के लिए हैं, ताकि हम ईश्वर से जुड़ सकें, वो आंतरिक शक्ति पा सकें जिससे हम दूसरों की सेवा और प्रभावी ढंग से कर पाएं।
जैसे गांधी जी का उदाहरण आपने दिया।
हाँ, गांधी जी का उदाहरण बिल्कुल सटीक है। वो शायद दिन में आधा घंटा ही प्रार्थना करते होंगे, पर उनका पूरा जीवन लोक मंगल के लिए था, इसलिए उनकी इस छोटी प्रार्थना में भी बहुत बल था। साधना और सेवा ये एक दूसरे के पूरक हैं, अलग नहीं हैं।
तो वंदनीय माताजी के अनुसार अध्यात्म का सच्चा स्वरूप ये हुआ कि हम सिर्फ व्यक्तिगत साधना में ही न लगे रहें।
जी नहीं,
बल्कि आत्म परिष्कार के साथ साथ निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में, लोक कल्याण में भी सक्रिय हों। दोनों साथ साथ चलें।
एकदम सही कहा। ये सिर्फ रस्मों रिवाज या कर्मकांड तक सीमित नहीं है, ये उससे बहुत आगे करुणा और सेवा पर आधारित एक जीवन दृष्टि है। अपने छोटे से मैं के दायरे से बाहर निकलकर सबके हित के लिए जीना।
आज की इस पूरी चर्चा से एक विचार मन में अटक सा गया है। वंदनीय माताजी जैसे कह रही हैं कि सच्ची भक्ति हमें अंदर से, मतलब एक तरह से मजबूर कर देती है कि हम दूसरों का दुख देखकर चुप न रहें, चाहे हमें खुद भी तकलीफ क्यों न उठानी पड़े।
हाँ, ये एक स्वाभाविक प्रेरणा बन जाती है।
तो आज के समय में अपनी इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हम ऐसा कौन सा छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा निस्वार्थ काम कर सकते हैं जिसमें ये सिद्धांत झलके, ये सोचने वाली बात है।